एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, आज हम ग्रंथसार में एक ऐसे उपन्यास की गहराई में उतर रहे हैं जिसने पीढ़ियों को प्रभावित किया है।
हाँ, शार्लेट ब्रॉन्टे का कालजयी उपन्यास जेन आया।
बिल्कुल, 1847 में प्रकाशित हुआ ये उपन्यास विक्टोरियन इंग्लैंड के उस दौर की कहानी है। एक ऐसा समय जब समाज के नियम, अब जानते हैं, बहुत सख्त थे।
हाँ, खासकर महिलाओं के लिए तो बहुत ही ज्यादा, और शार्लेट ब्रॉन्टे खुद उसी दौर की थीं। लगता है जैसे जेन के जरिए उन्होंने अपनी ही आवाज उठाई हो।
सही कहा, और ये सिर्फ एक प्रेम कहानी भर नहीं है।
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एक बिल्डुंग्स रोमान है, मतलब एक ऐसी कहानी जो किरदार के बचपन से बड़े होने तक का सफर दिखाती है, उसका पूरा विकास, नैतिक, मनोवैज्ञानिक।
हाँ, और उसमें वो गॉथिक वाले तत्व भी है ना, रहस्य, डरावना सा माहौल।
बिल्कुल, पुरानी हवेलियां, राज, और साथ ही उस समय के समाज पर एक तीखी टिप्पणी भी।
और नायिका जेन आयर, वो अपने आप में बहुत खास है। पारंपरिक हीरोइन जैसी नहीं है वो।
न खूबसूरत न अमीर, साधारण सी दिखने वाली, लेकिन हाँ, बुद्धिमान बहुत है, संवेदनशील है, और इरादे उसके बहुत मजबूत हैं।
और पूरा उपन्यास जैसे उसी के अंदरूनी दुनिया पर केंद्रित है, उसके संघर्ष, उसकी भावना है।
हाँ, और कहानी का जो मूल सवाल है वो शायद यही है कि क्या एक कह सकते हैं गरीब, साधारण सी दिखने वाली महिला समाज के बंधनों और अपनी अंतरात्मा की आवाज के बीच संतुलन साधते हुए सच्चा प्यार और सम्मान पा सकती है?
यही सवाल है। तो चलिए जेन की इस यात्रा को शुरू से समझते हैं। गेट सेट हॉल से शुरुआत करते हैं।
हाँ, तो कहानी यूं शुरू होती है कि जेन 10 साल की है, अनाथ है, माँ बाप गुजर चुके हैं, और रहती है अपनी मौसी मिसेज रीड के घर गेटसेट हॉल में। जी, लेकिन वो कोई प्यार वाला घर नहीं है। मिसेज रीड तो उससे नफरत सी करती हैं, और उनके बच्चे हैं जॉन, इलिजा, जॉर्जियाना।
वो तो बहुत परेशान करते होंगे जेन को।
बहुत ज्यादा, खासकर वो जॉन रीड, वो तो उसे मारता पीटता भी है। बेचारी जेन बिल्कुल अकेली है, उसे अक्सर किताबों में ही सुकून मिलता है।
ये अकेलापन और अन्याय का माहौल, ये तो जेन के मन पर बहुत गहरा असर डालता होगा शुरू से ही।
बिल्कुल, किताबें पढ़ना शायद उसके लिए एक तरह का एस्केप था, बाहरी दुनिया की कड़वाहट से बचने का एक तरीका। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जॉन रीड बहुत ज्यादा बदतमीजी करता है, जेन पर हमला करता है, और जेन जेन पलट कर लड़ पड़ती है।
अच्छा, पहली बार उसका वो विद्रोही रूप सामने आता है।
हाँ, वो चिंगारी दिखती है, लेकिन इसकी सजा उसे बहुत भयानक मिलती है।
वो रेड रूम वाली घटना।
हाँ, वही, उसे रेड रूम में बंद कर दिया जाता है, और ये वो कमरा है जहां उसके मामा मिस्टर रीड, जो जेन से थोड़ा प्यार करते थे, उनकी मौत हुई थी।
और कमरा भुता माना जाता है।
बिल्कुल, उस अंधेरे डरावने कमरे में अकेली जेन, वो बुरी तरह डर जाती है। उसे लगता है उसे मिस्टर रीड का भूत दिख रहा है, और वो दहशत के मारे बेहोश हो जाती है। ये घटना जेन के लिए सिर्फ सजा नहीं, एक ट्रॉमा बन जाती है। अन्याय और अकेलेपन की भावना और गहरी हो जाती है।
इस मुश्किल वक्त में कोई तो होगा जो थोड़ी हमदर्दी दिखाता हो।
हाँ, बस एक नौकरानी है, बेसीली, वो थोड़ी नर्म दिल है।
इस घटना के बाद तुम मिसेस रीड से रिश्ते और बिगड़ गए होंगे।
हाँ, तनाव बढ़ जाता है, और एक दिन जेन अपनी मौसी के सामने अपने दिल की सारी भड़ास निकाल देती है, उसे उसकी क्रूरता का आईना दिखाती है।
और नतीजा?
नतीजा ये कि मिसेज रीड उसे गेट्सहेड से दूर भेजने का फैसला करती हैं, लोवुड नाम के एक चैरिटी स्कूल में।
तो गेट्सहेड का ये दौर कह सकते हैं जेन के जीवन में अन्याय, भावनात्मक उपेक्षा और उसके विद्रोही स्वभाव की नींव रखता है।
हाँ, और मिसेज रीड जैसे उस वक्त की पूरी सामाजिक संरचना का प्रतीक है, कठोर, असंवेदनशील, खासकर अनाथ और गरीब बच्चों के लिए। ये जगह भी कोई आराम की जगह नहीं है, माहौल बहुत ठंडा है, उदास, कठोर।
और वहां वो मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट है ना, स्कूल के संचालक।
हाँ, मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट बड़े पाखंडी किस्म के आदमी हैं, लड़कियों को तो सादगी और त्याग का पाठ पढ़ाते हैं।
और खुद ऐशोराम से रहते हैं।
बिल्कुल, उनका अपना परिवार विलासिता में रहता है।
ये पाखंड उस दौर के धार्मिक संस्थानों पर भी एक तरह की टिप्पणी है ना, जहां कहा कुछ जाता था, किया कुछ और जाता था।
सही कहा, लोवुड में जेन को बहुत मुश्किलें झेलनी पड़ती हैं।
जैसे कि
खाना बहुत कम और बेस्वाद, कपड़े ऐसे कि ठंड में पूरे ना पड़े, और अनुशासन बेहद सख्त, छोटी छोटी गलतियों पर भी कड़ी सजा।
लेकिन वहां उसकी मुलाकात कुछ अच्छे लोगों से भी होती है।
हाँ, दो लोग खास हैं। एक तो हेलेन बर्न्स, जेन से थोड़ी बड़ी है उम्र में।
कैसी है हेलेन?
हेलेन बहुत शांत है, सहनशील और काफी धार्मिक। बाइबल में उसका गहरा विश्वास है। अन्याय को भी वो चुपचाप सह लेती है। वो जेन की पहली दोस्त बनती है।
ये तो जेन के स्वभाव से काफी अलग हुई। जेन विद्रोही, हेलेन सहनशील।
हाँ, ये कॉन्ट्रास्ट काफी दिलचस्प है। और दूसरी है मिस टेम्पल, स्कूल की सुपरिंटेंडेंट।
वो अच्छी हैं।
वो बहुत दयालु हैं, समझदार हैं। वो जेन की बुद्धि और उसकी प्रतिभा को पहचान लेती हैं। जब मिस्टर ब्रॉकलहर्स्ट सबके सामने जेन को झूठा ठहराते हैं ना,
हाँ,
तब मिस टेम्पल ही जेन का पक्ष लेती हैं, उसकी बेगुनाही साबित करती हैं। ये जेन के लिए बहुत बड़ा सहारा होता है।
तो लोर्ड में सख्ती भी है और थोड़ी इंसानियत भी, पर मुश्किलें खत्म नहीं होती शायद।
नहीं, बिल्कुल नहीं। स्कूल में भयानक टाइफस बुखार फैलता है। साफ सफाई की कमी, खाने की कमी, इन वजहों से कई लड़कियों की मौत हो जाती है।
ओह,
और उसी दौरान जेन की प्यारी दोस्त हेलेन बर्न्स, उसकी भी टीबी से मौत हो जाती है।
जिसे उस समय कंजम्पशन कहते थे।
हाँ, खपत। और हेलेन की मौत जेन की बाहों में होती है। ये जेन के लिए एक और गहरा सदमा होता है।
इन अनुभवों ने जेन को कितना बदला होगा। 8 साल रही वो लोवुड में, 6 साल छात्रा, 2 साल टीचर।
लोवुड ने जेन को गढ़ा कह सकती हूँ। कठिनाइयों ने उसे मजबूत बनाया, उसका लचीलापन बढ़ा।
शिक्षा भी मिली उसे वहां?
हाँ, अच्छी शिक्षा मिली, अनुशासन सीखा। मिस टेम्पल के मार्गदर्शन ने उसे बौद्धिक रूप से भी विकसित किया। और हेलेन की मौत, उसने उसे जीवन और मृत्यु के बारे में सोचने पर मजबूर किया।
वो हेलेन की सहनशीलता से प्रभावित तो होती है, पर उसे अपनाती नहीं है पूरी तरह।
नहीं, वो हेलेन की तारीफ करती है, पर खुद वो रास्ता नहीं चुनती। जेन के लिए आत्मसम्मान और अन्याय का विरोध करना भी उतना ही जरूरी है।
तो लोवुड से निकलकर 18 साल की जेन अब तैयार है दुनिया में कदम रखने के लिए?
हाँ, वो एक गवर्नेस की नौकरी के लिए विज्ञापन देती है, बच्चों को पढ़ाने वाली टीचर।
और उसे नौकरी मिलती है थॉमफील्ड हॉल में।
जी, थॉर्नफील्ड हॉल, एक बड़ी पुरानी और थोड़ी रहस्यमयी सी हवेली। जेन को वहाँ एक अडेल वॉरेंस नाम की एक छोटी फ्रांसीसी लड़की को पढ़ाना है। वो घर के मालिक मिस्टर एडवर्ड रोचेस्टर की वार्ड है।
और मिस्टर रोचेस्टर खुद कैसे हैं?
वो खुद एक पहेली हैं, अक्सर घर से बाहर रहते हैं, मूडी है, उनके बारे में तरह तरह की बातें होती हैं।
थॉर्नफील्ड का माहौल भी कुछ अजीब सा लगता है ना कहानी में। रात में वो अजीब सी हंसी, कुछ अनहोनी घटनाएं।
हाँ, ये गॉथिक तत्व है, रहस्य, डरावना माहौल, पुरानी हवेली, छुपे हुए राज, ये सब मिलकर एक तनाव और उत्सुकता पैदा करते हैं।
और जेन की मिस्टर रोचेस्टर से पहली मुलाकात, वो भी काफी नाटकीय है।
बहुत। एक बर्फीली शाम को रोचेस्टर घोड़े पर आ रहे होते हैं, घोड़ा फिसलता है और जेन उनकी मदद करती है। शुरू में रोचेस्टर थोड़े रूखे से लगते हैं, चिड़चिड़े,
लेकिन धीरे धीरे उनके बीच कुछ अलग सा रिश्ता बनने लगता है।
हाँ, सिर्फ मालिक और नौकरानी का नहीं, उससे कहीं ज्यादा गहरा।
कैसा रिश्ता है ये?
उनकी बातचीत बहुत तेज, हाजिर जवाबी वाली, इंटेलेक्चुअल किस्म की होती है।
बिल्कुल।
रोचेस्टर जेन की सादगी, ईमानदारी, उसकी बुद्धि और उसकी आत्मा की मजबूती से बहुत प्रभावित होते हैं।
उन्हें हैरानी होती होगी कि एक साधारण गवर्नेस में इतनी गहराई कैसे।
बिल्कुल। और जेन, वो रोचेस्टर की उस मूडी, कभी कभी उदास लेकिन जोशीले और दिलचस्प स्वभाव की तरफ खींचती है। उसे रोचेस्टर में एक ऐसी आत्मा दिखती है जो शायद अकेली है, परेशान है।
यहाँ रोचेस्टर का वो बायरनिक हीरो वाला रूप सामने आता है, उदास, बुद्धिमान, थोड़ा दुनिया से कटा हुआ, अतीत में कुछ राज, लेकिन फिर भी आकर्षक।
हाँ, और उनका ये रिश्ता उस समय के सामाजिक दायरे को सीधी चुनौती देता है। एक अमीर मालिक और एक गरीब गवर्नेस के बीच बराबरी का रिश्ता।
जीन का वो मशहूर डायलॉग भी तो है यहीं कहीं, जब उसे लगता है रोचेस्टर से कमतर समझ रहे हैं।
दीप, गुमनाम, सादी और छोटी हूँ, मुझ में आत्मा नहीं है, दिल नहीं है, आप गलत सोचते हैं, मुझ में उतनी ही आत्मा है जितनी आप में और उतना ही दिल, ये बराबरी की मांग है।
और थॉर्नफील्ड में रहस्य भी बढ़ता जाता है।
हाँ, एक रात रोचेस्टर के कमरे में आग लग जाती है, रहस्यमय तरीके से,
और जेन उसे बचाती है।
हाँ, जेन वक्त पर पहुंचकर उसकी जान बचाती है। फिर एक बार घर में एक मेहमान आते हैं, मिस्टर मेसन, उन पर रात में बेरहमी से हमला होता है।
और शक किस पर जाता है?
शक जाता है घर की एक अजीब सी नौकरानी, ग्रेस पूल पर। लेकिन जेन को यकीन नहीं होता कि ये सब ग्रेस पूल अकेली कर सकती है।
ये घटनाएं सिर्फ रहस्य नहीं बढ़ा रही, बल्कि रॉचेस्टर के अतीत की तरफ, किसी बड़े राज की तरफ इशारा कर रही हैं। ब्रॉन्टे यहाँ पूर्वाभास का अच्छा इस्तेमाल करती हैं।
बिल्कुल। इसी बीच रॉचेस्टर एक खेल खेलता है जेन की भावनाओं को परखने के लिए।
वो ब्लैंच इनग्राम वाला किस्सा?
हाँ, वो इलाके की एक खूबसूरत, अमीर पर थोड़ी घमंडी लड़की ब्लैंच इनग्राम उसके साथ नजदीकियां बढ़ाता है, दिखाता है जैसे उससे शादी करने वाला हो।
जेन को बहुत दुख होता होगा ये देखकर।
बहुत, क्योंकि वो मन ही मन रोचेस्टर से प्यार करने लगी है।
ये रोचेस्टर का थोड़ा कह सकते हैं क्रूर पहलू भी दिखाता है। जेन को जलन महसूस कराकर सच जानना चाहता।
हाँ, लेकिन आखिरकार वो ब्लैंच को छोड़ता है और जेन के सामने अपने प्यार का इजहार करता है, उससे शादी का प्रस्ताव रखता है।
जेन तो हैरान रह गई होगी।
हैरान भी और खुश भी। वो भी रोचेस्टर से बहुत प्यार करती है, वो हाँ कह देती है।
और उसी रात वो पेड़ टूटने वाली घटना होती है, शाहबलूत का पेड़।
हाँ, बगीचे में एक बड़ा शाहबलूत का पेड़ तूफान में बीच से टूट जाता है। ये भी एक संकेत है उनके रिश्ते में आने वाले तूफान का।
शादी की तैयारियां होती हैं, पर जेन को बुरे सपने आते हैं, शादी का घूंघट फट जाता है। ये सब अशुभ संकेत हैं।
और फिर आता है शादी का दिन, चर्च में, जब पादरी रस्म पूरी कर रहे होते हैं।
तभी कोई रोकता है शादी।
हाँ, एक आवाज गूंजती है, शादी रोको। एक वकील सामने आता है और खुलासा करता है कि मिस्टर रोचेस्टर पहले से शादीशुदा हैं।
ये तो कहानी का सबसे बड़ा मोड़ है। क्या पता चलता है उनकी पहली शादी के बारे में?
पता चलता है कि रोचेस्टर की पत्नी बर्था मेसन जिंदा है और उसे थॉर्नफील्ड हॉल की ही एक गुप्त अटारी में सालों से बंद करके रखा गया है।
बर्था मेसन, वो कौन है?
वो वेस्ट इंडीज की एक अमीर क्रियोल उत्तराधिकारिणी है, लेकिन वो हिंसक रूप से पागल है।
ओह।
रोचेस्टर बताता है कि उसे जवानी में धोखे से, दौलत के लालच में फंसाकर बर्था से शादी करवाई गई थी। बाद में उसे उसके पागलपन का पता चला। वो अजीब हंसी, आग लगाना, मिस्टर मेसन पर हमला,
वो सब बर्था ने किया था, ग्रेसपूल नहीं।
हाँ, वो सब बर्था ने किया था, ग्रेसपूल तो सिर्फ उसकी देखभाल करने वाली थी।
ये खुलासा तो जेन के लिए सब कुछ खत्म होने जैसा होगा।
बिल्कुल, उसका प्यार, उसके सपने, सब एक पल में टूट जाते हैं।
रोचेस्टर अब क्या चाहता है जेन से?
रोचेस्टर जेन से मिन्नतें करता है, कहता है पत्नी न सही, प्रेमिका बनकर उसके साथ रहे, यूरोप चले जाएं। वो जेन से प्यार करता है, उसके बिना नहीं रह सकता।
ये जेन के लिए सबसे बड़ी परीक्षा की घड़ी है, एक तरफ प्यार, दूसरी तरफ सिद्धांत।
और जेन चुनती है अपने सिद्धांतों को। वो रोचेस्टर से प्यार करती है, बहुत करती है, लेकिन वो किसी की रखेल बनकर नहीं जी सकती, समाज की नजर में, अपनी नजर में गिरकर।
उसका वो मशहूर वाक्य भी है,
मैं कोई पंछी नहीं हूँ
और कोई जाल मुझे फंसाता नहीं है, मैं एक स्वतंत्र इंसान हूँ जिसकी अपनी मर्जी है।
वो मानती है कि रोचेस्टर के साथ इस तरह रहना उसके आत्मसम्मान के खिलाफ होगा।
तो वो क्या करती है?
भारी मन से, टूटे दिल से, उसी रात वो चुपचाप थॉर्नफील्ड हॉल छोड़कर चली जाती है, बिना पैसे, बिना किसी ठिकाने के।
यहाँ वो उपन्यास का केंद्रीय संघर्ष, जुनून बनाम सिद्धांत, अपने चरम पर है। जेन ने प्यार पर अपने आत्मसम्मान और नैतिक आजादी को चुना।
हाँ, और बर्था मेसन का किरदार, वो भी बहुत प्रतीकात्मक है। कोई इसे दबा हुआ स्त्री जुनून या गुस्सा कहता है,
कोई जेन का डार्क डबल।
हाँ, या रोचेस्टर के औपनिवेशिक अतीत का नतीजा।
हाँ।
या विक्टोरियन समाज में औरतों की कैद का प्रतीक, बहुत पढ़ते हैं उसमें।
तो थॉर्नफील्ड से भागने के बाद जेन का क्या होता है? उसकी हालत तो बहुत खराब हो गई होगी।
बहुत बुरी, कई दिन तक भूखी प्यासी भटकती है, भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है, ठंड और भूख से वो लगभग मरने वाली होती है। तभी वो बेहोश होकर एक घर के दरवाजे पर गिर पड़ती है,
मूर हाउस।
और वहाँ उसे कौन मिलता है?
वहाँ उसे मिलते हैं सेंट जॉन रिवर्स और उसकी दो बहनें, डायना और मैरी।
सेंट जॉन रिवर्स वो पादरी है।
हाँ, पादरी है, पढ़ा लिखा, सिद्धांतवादी, पर थोड़ा ठंडा, कठोर स्वभाव का। उसकी बहनें ज्यादा दयालु हैं, मिलनसार हैं। वो जेन की देखभाल करते हैं, उसे होश में लाते हैं।
जेन अपनी असली पहचान तो नहीं बताती होगी? नहीं, वो अपना नाम जेन इलियट बताती है। सेंट जॉन उसे पास के गांव मॉर्टन में लड़कियों के लिए एक छोटा स्कूल खोलकर वहां पढ़ाने का काम दे देता है।
और डायना और मैरी से उसकी दोस्ती हो जाती है?
हाँ, उन बहनों के साथ उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है। वे तीनों बौद्धिक रूप से काफी जुड़ जाते हैं, लेकिन सेंट जॉन के साथ उसका रिश्ता थोड़ा असहज सा रहता है।
सेंट जॉन महत्वाकांक्षी है शायद।
बहुत। उसका सपना है भारत जाकर मिशनरी बनना, लोगों का धर्म परिवर्तन कराना।
तो ये जेन के जीवन का एक नया दौर है, रिकवरी का, फिर से अपने पैरों पर खड़े होने का। मूर हाउस एक तरह की पनागा है।
हाँ, एक अस्थायी पनागा। लेकिन यहाँ भी एक बड़ा ट्विस्ट आता है।
क्या होता है?
सेंट जॉन को किसी तरह जेन की असली पहचान पता चल जाती है और साथ ही एक और खबर मिलती है।
क्या?
जेन के एक चाचा थे जॉन आयर। मदीरा में उनकी मौत हो गई है और उन्होंने जेन के लिए 20,000 पाउंड की भारी भरकम विरासत छोड़ी है।
20,000 पाउंड? उस जमाने में तो ये बहुत बड़ी रकम थी।
जेन अचानक अमीर हो जाती है। हाँ, और एक और राज खुलता है,
परिवार से जुड़ा हुआ।
हाँ, पता चलता है कि जॉन आयर सिर्फ जेन के ही नहीं बल्कि सेंट जॉन, डायना और मैरी के भी चाचा थे।
अरे, मतलब वो चारों चचेरे भाई बहन हैं।
बिल्कुल, जेन को न सिर्फ दौलत मिलती है बल्कि वो परिवार भी मिल जाता है जिसकी उसे हमेशा तलाश थी। वो फौरन अपनी विरासत चारों में बराबर बांटने का फैसला करती है।
ये जेन की उदारता है, लेकिन सेंट जॉन, उसके दिमाग में कुछ और चल रहा होता है।
हाँ, सेंट जॉन जेन के सामने एक अजीब सा प्रस्ताव रखता है। वो जेन से शादी करना चाहता है।
शादी? क्या वो उससे प्यार करता है?
नहीं, प्यार नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे लगता है कि जेन एक मिशनरी की पत्नी बनने के लिए एकदम सही है, स्वभाव से, गुणों से। वो चाहता है जेन उसके साथ भारत चले और उसके काम में मदद करे।
ये जेन के लिए एक और बहुत कठिन परीक्षा है। सेंट जॉन रॉचेस्टर से कितना अलग है? एक तरफ जोशीला जुनून, दूसरी तरफ ठंडा कर्तव्य।
हाँ, सेंट जॉन को रॉचेस्टर का फॉयल कह सकते हैं, एक ऐसा किरदार जो मुख्य किरदार के बिल्कुल विपरीत हो। रॉचेस्टर जुनून है तो सेंट जॉन कठोर कर्तव्य।
उसका प्रस्ताव जेन को एक विकल्प देता है, कर्तव्य और बलिदान का जीवन जिसमें शायद भावनात्मक संतुष्टि ना हो।
जेन इस पर गंभीरता से सोचती है। उसे लगता है शायद यही ईश्वर की मर्जी है, शायद यही उसका कर्तव्य है। वो सेंट जॉन की लगन का सम्मान करती है। वो लगभग हाँ कहने ही वाली होती है,
लेकिन तभी कुछ अलौकिक सा होता है।
हाँ बिल्कुल, उसी पल जेन को अचानक मीलों दूर से रॉचेस्टर की आवाज सुनाई देती है। वो उसे पुकार रहा होता है, जेन, जेन, जेन।
ये कैसे संभव है?
ये रहस्यमयी है, अलौकिक है। जेन इसे एक दैवीय संकेत मानती है। उसे एहसास होता है कि उसका दिल अभी भी रॉचेस्टर के लिए ही धड़कता है।
तो वो सेंट जॉन को मना कर देती है।
हाँ, वो सेंट जॉन के प्रस्ताव को ठुकरा देती है और फौरन थॉर्नफील्ड वापस जाने का फैसला करती है।
ये टेलीपैथिक पुकार, ये जेन और रोचेस्टर के बीच के उस गहरे आत्मिक संबंध का प्रतीक है जो तर्क और दूरी से परे है। दिखाता है कि उनका बंधन कितना मजबूत है।
हाँ, तो जेन वापस थॉर्नफील्ड जाती है।
लेकिन वहां उसे क्या मिलता है?
जब वो थॉर्नफील्ड पहुंचती है तो वो आलीशान हवेली अब एक जला हुआ खंडहर है।
आग लग गई थी?
हाँ, उसे पता चलता है कि कुछ महीने पहले बर्था मेसन अपनी अटारी से भाग निकली थी। उसने पूरे घर में आग लगा दी और फिर छत से कूदकर आत्महत्या कर ली।
और रोचेस्टर? रोचेस्टर कहाँ है?
रोचेस्टर ने घर के नौकरों और बर्था को बचाने की बहुत कोशिश की थी। उस कोशिश में वो बुरी तरह घायल हो गया।
क्या हुआ उसे?
आग की लपटों और गिरते मलबे ने उसकी आंखों की रोशनी छीन ली और उसका एक हाथ भी बेकार हो गया।
ओह, बेचारा।
बर्था की मौत के बाद वो थॉर्नफील्ड छोड़कर पास ही में फर्नडीन नाम की एक छोटी एकांत जागीर में रहने लगा है अपने दो वफादार नौकरों के साथ।
आग का ये प्रतीकावाद बहुत गहरा है, विनाश भी और शायद शुद्धिकरण भी। रोचेस्टर का अभिमान जल गया, वो विनम्र हो गया, शायद ये उसके कर्मों का प्रायश्चित है।
और बर्था की मौत ने उसे आखिरकार उसके अतीत के बोझ से आजाद कर दिया।
जेन अब फर्नीन जाती है।
हाँ, फौरन वहां वो रोचेस्टर को पाती है, अंधा, अपाहिज, अकेला, निराश। उनका दोबारा मिलना बहुत भावुक है। रोचेस्टर को तो यकीन ही नहीं होता कि जेन उसकी इस हालत में भी उसके पास लौट आई है।
लेकिन जेन अब वो पहले वाली जेन नहीं है, वो बदल चुकी है।
बिल्कुल, वो अब आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, आत्मनिर्भर है। और रोचेस्टर, वो अब शारीरिक रूप से जेन पर निर्भर है। अब वे सही मायनों में बराबर हैं।
हाँ, अब रिश्ता बराबरी का है।
जेन रोचेस्टर को यकीन दिलाती है कि वो उससे अब भी उतना ही प्यार करती है, हमेशा उसके साथ रहेगी। वो कहती है, मैं तुम्हारी साथी बनूंगी, तुम्हारी नर्स, तुम्हारी गृहस्थी संभालने वाली, मैं तुम्हारी आंखें बनूंगी और तुम्हारे हाथ।
ये एक सच्ची साझेदारी का, पार्टनरशिप का वादा है।
रोचेस्टर जेन से फिर से शादी का प्रस्ताव रखता है और इस बार जेन बिना किसी हिचक के खुशी खुशी हाँ कह देती है।
और उपन्यास का अंत उस प्रसिद्ध वाक्य से होता है।
हाँ, जेन सीधे पाठक से कहती है, पाठक, मैंने उससे शादी कर ली।
रीडर, आई मैरिड हिम।
जेन आके बताती है कि उनकी शादी को 10 साल हो गए हैं, वो खुश हैं, उनका एक बेटा भी है।
और धीरे धीरे रोचेस्टर की एक आंख की रोशनी भी वापस आ गई है,
इतनी कि वो अपने बेटे का चेहरा देख सकता है।
ये अंत जेन के लिए एक पूर्ण और सुखी जीवन दिखाता है।
सेंट जॉन के रास्ते से कितना अलग।
हाँ, सेंट जॉन भारत गया और खुद को काम में इतना झोंक दिया कि जवानी में ही उसकी मृत्यु हो गई।
तो ये पुनर्मिलन और सुखी अंत, ये इसलिए संभव हुआ क्योंकि जेन अब रोचेस्टर के बराबर खड़ी थी, आर्थिक रूप से, भावनात्मक रूप से, नैतिक रूप से।
हाँ, ये एक स्वतंत्र स्वायत्त महिला का सोच समझ कर लिया गया फैसला था, कोई मजबूरी नहीं थी। उपन्यास जिन मुख्य विषयों को छूता है वो पूरी कहानी में बिखरे हुए हैं, जैसे प्रेम बनाम स्वायत्तता या जुनून बनाम सिद्धांत का वो संघर्ष।
हाँ, जो जेन के हर फैसले में दिखता है। और सामाजिक वर्ग का मुद्दा, वो तो हर कदम पर है। जेन को लगातार उसकी गरीबी, नीची हैसियत याद दिलाई जाती है,
लेकिन वो हमेशा अपने अंदरूनी मूल्यों और आत्मसम्मान पर जोर देती है।
बिल्कुल। और धर्म और नैतिकता के भी कई रूप दिखे, ब्रॉकलहर्स्ट का पाखंड, हेलेन का निष्क्रिय विश्वास, सेंट जॉन का कठोर कर्तव्य वाला धर्म,
और जेन का अपना व्यक्तिगत नैतिक विवेक जो दया और आत्मसम्मान पर आधारित है।
और हाँ, लिंग भूमिकाएं, और जिसे हम आज आद्य नारीवाद कह सकते हैं, जेन उस जमाने की औरतों के लिए तय दायनों को चुनौती देती है, पुरुषों के बराबर बौद्धिक और भावनात्मक आजादी की मांग करती है।
और उसका पूरा जीवन ही जैसे घर, अपनेपन और पहचान की तलाश है।
हाँ, उपन्यास की कथा शैली भी इसे बहुत खास बनाती है। पूरी कहानी जेन की जुबानी है, फर्स्ट पर्सन में।
इससे हम सीधे जेन के मन से, उसकी भावनाओं से जुड़ जाते हैं। अंदाज बहुत अंतरंग लगता है, सच्चा लगता है।
बिल्कुल। और वो प्रतीक, रेड रूम, आग, बर्फ, ये पूरी कहानी में गहरे अर्थ भरते हैं। शार्लट ब्रोंटे का ये उपन्यास इसलिए क्रांतिकारी था क्योंकि इसने पहली बार एक साधारण दिखने वाली महिला की जटिल अंदरूनी दुनिया को इतने विस्तार और सहानुभूति से दिखाया।
इसने विक्टोरियन समाज की मान्यताओं को चुनौती दी, मनोवैज्ञानिक उपन्यासों के लिए एक नई राह खोली।
तो अंत में ये कहानी हमें सिखाती क्या है? शायद ये कि बाहरी परिस्थितियां या समाज के पैमाने, उनसे ज्यादा जरूरी है इंसान का अंदरूनी बल, उसका आत्मसम्मान।
और ये भी कि सच्चा प्यार और सच्ची बराबरी, ये एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शायद जीन आयर की कहानी इसीलिए आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती है। ये आत्मसम्मान के साथ प्रेम को पाने की और अपनी शर्तों पर जीवन जीने की एक कालातीत खोज है।
ये संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।